दिन भर शुक्रवार 6 नवंबर मैं हूं निखिल रंजन। दिल्ली पहुंचे राजेंद्र निखलजे उर्फ छोटा राजन। सीबीआई मुख्यालय में हुई पहली पेशी। मुंबई पुलिस ने सीबीआई को सौंपे सारे मामले।
इसमें सबसे अच्छी एजेंसी जो इन्वेस्टिगेट कर सकती है वो है सीबीआई।
अंतर्राष्ट्रीय संगठन ग्रीन पीस का भारत में रजिस्ट्रेशन रद्द। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने असहनशीलता पर खोली जबान। कहा, असहमति को दबाना देश के लिए खतरनाक। कई दशकों तक भारतीय राजनीति का चेहरा बने रहने के बावजूद आखिर क्यों चूक गए लालकृष्ण आडवाणी।
लालकृष्ण आडवाणी जिस तरह का उनका राजनीतिक विकास हुआ है, वे अटल बिहारी वाजपेयी के पूरक के रूप में तो अच्छे हैं।
खबरें होंगी खेल की भी, लेकिन पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। इंडोनेशिया के बाली से गिरफ्तार किए गए छोटा राजन को आज भारत ले आया गया। छोटा राजन पर अंडरवर्ल्ड से जुड़े होने, हत्या, अपहरण और तस्करी जैसे कई मामलों में आरोप हैं। छोटा राजन के खिलाफ दर्ज किए गए सभी मामलों की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। मुंबई के महाराष्ट्र के अतिरिक्त गृह सचिव केपी बख्शी ने कहा है कि छोटा राजन के खिलाफ सभी मामलों को अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने में सीबीआई की विशेषज्ञता के कारण उसे सौंपा जा रहा है। अफगानिस्तान में एक महिला पर व्यभिचार का आरोप लगाकर पत्थर मार मार कर की गई हत्या के विरोध में सैकड़ों लोगों ने आज काबुल में विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने न सिर्फ तालिबान के खिलाफ नारे लगाए बल्कि सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की। इस हफ्ते एक वीडियो सामने आया था जिसमें रुखसाना नाम की एक महिला को लोग पत्थर मारते नजर आ रहे थे। रुखसाना की जबरन एक बूढ़े शख्स से शादी कराई गई थी। विरोध प्रदर्शन में शामिल काबुल के फरिश्ता करीम ने कहा,
It is risky to be in such kind of demonstration, but I don't think we have any other option. We have to stand for our rights.
इस तरह के प्रदर्शन में आना खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। हमें अपने हक के लिए खड़ा होना होगा। अगर आज मैं रुखसाना के लिए खड़ी होती हूं, तो कल कोई मेरे लिए आवाज उठाएगा। हम इसी तरह आगे बढ़ेंगे। हम अब घर में छुपकर नहीं रहेंगे। और कोई विकल्प भी हमारे पास नहीं है। ये थी काबुल की फरिश्ता करीम के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पर्यावरण के मामलों में काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था ग्रीन पीस के मुताबिक भारत में संस्था का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। ग्रीन पीस ने कहा है कि उसे इसके बारे में तमिलनाडु रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज से नोटिस मिला है। ग्रीन पीस ने आरोप लगाया है कि सरकार ने संस्था को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया और उसके बगैर ही ये कदम उठा लिया गया। ग्रीन पीस ने संकेत दिए हैं कि संस्था रजिस्ट्रेशन रद्द किए जाने के खिलाफ अदालत में चुनौती देगी। रूस के खुफिया विभाग ने मिस्र जाने वाली सभी रूसी उड़ानें फिलहाल रोकने की सिफारिश की है। एफएसबी के अलेक्जेंडर बोर्तनिकोव ने कहा है कि पिछले हफ्ते सिनाई प्रायद्वीप में हुए रूसी विमान हादसे की वजह पता चल जाने तक ये उड़ानें रद्द कर दी जाएं। वहीं हादसे के बाद से बंद की गई ब्रिटेन के पर्यटकों को मिस्र के शर्म अल शेख से लाने वाली विमानों की आवाजाही को आज शुरू कर दिया गया। ब्रिटेन का कहना है कि उसे मिली खुफिया जानकारी से संकेत मिलते हैं कि विमान के कार्गो में बम रखा गया था। तुर्की की पुलिस ने अंताल्या शहर में 20 लोगों को चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट से कथित तौर पर जुड़े होने के शक में गिरफ्तार किया है। अंताल्या में 15 और 16 नवंबर को G20 देशों की समिट होने वाली है, जिसमें अमरीका के राष्ट्रपति बराक ओबामा और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी हिस्सा लेने वाले हैं। गिरफ्तार किए गए दो लोग रूस के बताए जा रहे हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर दिनभर में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम आप bbchindi.com और मोबाइल पर भी सुन रहे हैं। आज निखिल रंजन के साथ। आज शुक्रवार है और आप सबको इंतजार है विवेचना का, तो हम जरूर सुनाएंगे आपको रेहान फजल की विवेचना। लेकिन उससे पहले कुछ खास खबरों की चर्चा कर लेते हैं। इंडोनेशिया के बाली में इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार हुए कई आपराधिक मामलों में वांछित छोटा राजन को आज सुबह भारत लाया गया है। भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच छोटा राजन को सीबीआई के मुख्यालय ले जाया गया, जहां उनसे जुड़ी कानूनी औपचारिकताएं चल रही हैं। खबर ये भी है कि इस दौरान उनसे कुछ पूछताछ भी हुई है। उधर महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में छोटा राजन के खिलाफ दर्ज सारे मामलों को सीबीआई को सौंप दिया है। पूरे ब्यौरे के साथ रोहित जोशी।
शुक्रवार की सुबह तकरीबन 5:20 पर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में भारतीय वायुसेना का गल्फ स्ट्रीम 3 विमान उतरा और इस विशेष विमान में मौजूद था अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन, जिसे पिछले दिनों इंडोनेशिया की पुलिस ने बाली में गिरफ्तार किया था। اس کے بعد تقریباً 6 بجے ایک بلیٹ پروف کالی امبیسڈر کار میں چھوٹا راجن کو کم سے کم 25 کمانڈوز کی سرکشا نگرانی میں دلی استھت سی بی آئی کے مکھیالے میں لایا گیا۔ اس دوران ساتھ میں سی بی آئی اور دلی پولیس کے ادھیکاری بھی موجود تھے۔ حالانکہ بھاری سرکشا انتظاموں کے بیچ میڈیا کے کیمرے چھوٹا راجن کی ایک بھی جھلک لینے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ سی بی آئی کے پروکتا نے چھوٹا راجن کے بھارت پہنچنے کی پشٹی کی ہے اور کہا ہے کہ وہ سی بی آئی انٹرپول کی حراست میں ہے اور اسے لے کر قانونی اوپچارکتائیں چل رہی ہیں۔ ادھر کیندریہ گرہ راجیہ منتری کرن رجیجو نے کہا ہے کہ اس معاملے میں بیان بازی کرنا ٹھیک نہیں ہے۔
ہم لوگوں کو جو کیس ہاتھ میں ہے، جو انسان کو یہاں پہنچا کے لے کے رکھ چکا ہے، اس کے بارے میں اور کیا کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کے بارے میں زیادہ وستار سے چرچا کرنا یہ کیس کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اور سارا کیسز جو ہے سی بی آئی کے ہاتھ میں ٹرانسفر ہو گیا، تو اس میں ہم لوگ بیان بازی، اس کو خلاصہ کریں گے، کیا کیا کرنے جا رہا ہے یہ سب کو بتائیں گے، تو وہ کیس میں ہیمپر ہوگا، اس لیے اس کو سموتھلی آگے چلنے دینا چاہیے۔
پچھلے ہفتے چھوٹا راجن کو انڈونیشیا کے بالی میں پولیس نے انٹرپول سے ملی سوچنا کی مدد سے گرفتار کیا تھا، لیکن یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ چھوٹا راجن انڈر ورلڈ ڈان داؤد کی اور سے اپنی جان کو خطرے کے چلتے خود سے گرفتار ہوا ہے۔ لیکن اس بات کو پہلے خود چھوٹا راجن نے اور پھر سی بی آئی نے بھی خارج کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس گرفتاری کے لیے کافی پریاس کیے گئے تھے۔ ادھر مہاراشٹر سرکار نے چھوٹا راجن کے خلاف درج کیے گئے سبھی معاملوں کی جانچ کیندریہ انویشن بیورو یعنی سی بی آئی کو سونپ دی ہے۔ مہاراشٹر کے اترکت گرہ سچیو کے پی بخشی نے کہا ہے،
اس کے دوارا کمیٹڈ کرائمز جو ہیں وہ صرف مہاراشٹر راجیہ سے سمبندھت نہیں ہے، اس لیے ٹرانس نیشنل کرائم ہونے کی وجہ سے اس میں سب سے اچھی ایجنسی جو انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے وہ ہے سی بی آئی۔ اس لیے سرکار نے یہ نرنے لیا ہے یہ انویسٹیگیشن ہم سی بی آئی کو سونپ دیں، کہ اگر وہ چاہیں کہ چھوٹا راجن کو دلی میں رکھ کر ہی انکوائری کی جائے گی تو وہ ان کا نرنے ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ممبئی لے آویں اور ممبئی میں پوری طرح سے انکوائری کر لیں، اس کے لیے بھی ہماری پوری تیاری ہے۔
55 سال کا راجیندر سداشیو نکلجے عرف چھوٹا راجن ہتیا کے کئی معاملوں میں ابھیوکت ہے۔ اس کے خلاف ممبئی میں 70 معاملے درج ہوئے ہیں جبکہ دلی میں بھی اس کے خلاف کئی کیس درج ہیں۔
روہت جوشی، بی بی سی، دلی۔
انتراشٹریہ سنگٹھن گرین پیس کا رجسٹریشن رد کر دیا گیا ہے۔ تمل ناڈو رجسٹرار آف سوسائٹیز کے پاس اس سنگٹھن کو رجسٹر کیا گیا تھا جو اب رد ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے گرین پیس سے جڑی پریا پلئی سے اس بارے میں جانکاری مانگی۔
تمل ناڈو سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ کے تحت جو ہے ہم لوگ سوسائٹیز رجسٹریشن کے تحت رجسٹرڈ تھے بھارت میں۔ آج ہم کو رجسٹرار آف سوسائٹیز کی طرف سے ایک چٹھی آئی جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارا رجسٹریشن جو ہے سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ کے تحت وہ کینسل کر دیا گیا ہے، اس کو رد کر دیا گیا ہے، اور وہ چٹھی آج ہم کو پراپت ہوئی ہے۔ اس چیز کو لے کر کے کافی سمے سے جو ہے جانچ پڑتال چل رہی تھی۔ سوسائٹی رجسٹرار نے سوال اٹھائے تھے ہمارے اوپر کئی سارے، ان کے بہت ڈیٹیل جواب ہم نے دیے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے ہم نے کورٹ میں کیس بھی دائر کیا تھا اور ہم کو ایک سٹے آرڈر بھی ملا تھا۔
کیا وجہ ہو سکتی ہے، گرین پیس کو یہ بتایا گیا ہے کہ کس وجہ سے ان کا رجسٹریشن رد کیا جا رہا ہے؟
دیکھیے، انہوں نے یہ بولا ہے کہ ہم نے ایف سی آر اے وائلیشن کیا ہے اور اس کارنوش ہمارا رجسٹریشن رد کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ جو میٹر ہے یہ ابھی سب جوڈس ہے۔ اس سے پہلے جب ایف سی آر اے وائلیشن کو لے کر کے گرین پیس انڈیا کا 2 کیس ہم جیت بھی چکے ہیں، ایک انٹرم آرڈر ہمارے فیور میں ہے۔ آج کے تاریخ میں بھی جو ہے چنئی ہائی کورٹ میں ایف سی آر اے وائلیشن کو لے کر کے میٹر سب جوڈس ہے، اور جب یہ میٹر سب جوڈس ہے تب اس دوران ہی بیچ میں گھس کر سوسائٹیز رجسٹرار نے ہماری رجسٹریشن رد کی ہے۔
یہ جو آپ نے بتایا کہ اس سے پہلے بھی جانچ پڑتال چل رہی تھی، وہ جانچ پڑتال کس روپ میں تھی اور کس کے آدیش پر چل رہی تھی؟
جو یہ جانچ پڑتال چل رہی تھی یہ تمل ناڈو سوسائٹیز رجسٹرار کے آفس سے چل رہا تھا، اور یہ انہیں کے آدیش کے دوارا مطلب کو آگے بڑھاتے ہوئے چل رہا تھا۔ اس سے پہلے جو ہے وہاں کے آفیشلز ہمارے آفس آئے تھے، کچھ کاغذات اور ڈاکیومینٹ لے کے گئے تھے، کچھ کوئریز بھیجی تھی ہم کو جس کا ہم نے بہت ڈیٹیل روپ سے جواب دیا تھا۔ کورٹ نے کیونکہ میٹر سب جوڈس ہے تو کورٹ نے بھی ہم مطلب یہ آرڈر دیا تھا کہ ان جو سوال گرین پیس نے رجسٹرار کو کیے ہیں ان سوالوں کے جواب رجسٹرار کو سبمٹ کرنا ہے کورٹ میں۔ لیکن کورٹ کے آرڈر کو بھی نظر انداز کرتے ہوئے رجسٹرار نے آج ہمارا سوسائٹیز رجسٹریشن کینسل کیا ہے۔
اب آپ لوگوں کا اگلا قدم کیا ہوگا؟
اس سے پہلے بھی کئی بار پچھلے 1.5 سال میں گرین پیس کے اوپر اس طرح کا کریک ڈاؤن ہوا ہے، और ग्रीनपीस लगातार इन इन बहुत सफलता के साथ इस क्रैकडाउन को कोर्ट में केस दायर करके जीतती आ रही है। इस केस में भी हम मानते हैं कि बहुत हमारा स्ट्रांग लीगल ग्राउंड है और इसलिए हम इसको इस सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन को हम लीगली चैलेंज करेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय संगठन ग्रीन पीस का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है और इस बारे में जानकारी दे रही थी संगठन से जुड़ी प्रिया पिल्लई। असहनशीलता के मुद्दे पर चल रही लगातार ये जो बहस देश में है वो तेज होती जा रही है और इसके जल्द थमने के आसार नजर नहीं आ रहे। आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी इस पर अपनी राय जाहिर की। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जुड़े एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने असहनशीलता को देश के लिए खतरनाक बताया।
Ladies and gentlemen, is deeply concerned at the recent tragic instances of blatant violation of the right to freedom.
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कह रहे थे कि हमारे देश में कुछ हिंसक चरमपंथी गुटों की ओर से सोचने, बोलने और व्यक्ति की आजादी पर जो दुर्भाग्यपूर्ण हमले हुए हैं उससे देश में चिंताजनक हालात बन गए हैं। सिर्फ किसी के नजरिए से या खान पान के असहमत होने के चलते बौद्धिक लोगों का अपमान या उनकी हत्या कर दिया जाना किसी भी तरह जायज नहीं ठहराया जा सकता और किसी भी तरह से इसकी इजाजत देकर असहमति के अधिकार को नहीं दबाया जा सकता।
Of the right to dissent be allowed. A nation is not made just of brick and mortar, or of guns or steel.
कोई भी राष्ट्र सिर्फ ईंट, गारे या बंदूकों और स्टील से नहीं बनता है, सोना चांदी भी देश नहीं बनाते। राष्ट्र उसके मूल्यों से बनते हैं जिन्हें अपनाया जा रहा हो। एक राष्ट्र की सच्ची ताकत उसकी सरकार की ताकत में नहीं दिखाई देती बल्कि उन नैतिक मूल्यों की गहराई और नैतिक चरित्र की मजबूती में दिखाई देती है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शब्द।
बीबीसी इंडिया बोल।
बिहार का नतीजा 8 नवम्बर को आएगा। राज्य में महागठबंधन या NDA की सरकार बनेगी। चुनाव के नतीजे आगामी विधानसभा चुनाव पर भी डालेंगे प्रभाव। तो बिहार चुनाव का देश की राजनीति पर कितना होगा असर? किसका विकास मॉडल चलेगा, बिहार का या गुजरात का? इसी मुद्दे पर होगी इंडिया बोल में बहस। बहस में शामिल होने के लिए डायल करें 1800011 और अपने सवाल आप हमें bbchindi.indiabol@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।
बीबीसी इंडिया बोल।
तो आप सब लोग अपनी राय जरूर जाहिर करिएगा, अपने सवाल जरूर पूछिएगा इंडिया बोल में, ये हमारी गुजारिश है आपसे। और अब बात करते हैं विवेचना की। भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों से सत्ता के शिखर पर पहुंचाने का श्रेय अगर किसी को दिया जा सकता है तो वो है लालकृष्ण आडवाणी। लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, आडवाणी को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है। लालकृष्ण आडवाणी के 88वें जन्मदिन पर रेहान फजल बता रहे हैं कि कभी भारतीय दक्षिण पंथ के भीष्म पितामह कहलाने वाले आडवाणी भारतीय राजनीति में अप्रासंगिक क्यों हो गए हैं।
बोलो श्री लालकृष्ण आडवाणी जी की, सौगंध राम की खाते हैं। एलके आडवाणी जिंदाबाद, राम भक्त जिंदाबाद, और जोर से बोलिए भगवान श्री राम की।
लोग कहते हैं कि आप अदालत का फैसला क्यों नहीं मानते? अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहाँ पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? आपसे तो इतनी आशा है, बीच में मत पड़ो, रास्ते में मत आओ, क्योंकि ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है।
अगर ये कहा जाए कि नरेंद्र मोदी सरकार की आइडियोलॉजी के वास्तविक सूत्रधार लालकृष्ण आडवाणी हैं, तो इससे बहुत से लोग असहमत नहीं होंगे। उन्होंने 1984 में राजनीतिक हाशिए पर पहुंच चुकी भारतीय जनता पार्टी को बाबरी मस्जिद विध्वंस और राम जन्मभूमि आंदोलन के जरिए पहले भारतीय राजनीति के केंद्र बिंदु पर पहुंचाया और अंततः 1998 में सत्ता का स्वाद चखवाया। ये अलग बात है कि 2004 और 2009 के चुनावों में लगातार 2 हारों के बाद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का सिद्धांत आडवाणी के नेतृत्व पर भी लागू हुआ और अपेक्षाकृत एक नए नेता ने आडवाणी की जगह ले ली। भारतीय जनता पार्टी को नजदीक से देखने वाले राम बहादुर राय कहते हैं,
2004 के चुनाव पराजय के बाद भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी संगठनों में इस बात पर बहुत विचार हुआ कि नई लीडरशिप आनी चाहिए। और उसका एक बड़ा कारण यह था कि कांग्रेस में सूचनाएं आ रही थी कि राहुल गांधी नेतृत्व संभालने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में नई लीडरशिप के बारे में एक बातचीत शुरू हो गई थी और ये भी लग रहा था कि नई लीडरशिप में आडवाणी जी जो है वो अब नेतृत्व संभालने की स्थिति में नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर आडवाणी जी का जो प्रभाव था कहिए उस समय, उसके कारण जो ये विचार था कि नया नेतृत्व आना चाहिए, उसको उन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया। बल्कि अगर आप देखें तो वेंकैया नायडू उस समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, जब ये बात चली तो उन्होंने वेंकैया नायडू को तैयार किया, लेकिन वे कहते हैं कि वेंकैया नायडू ने अपने पारिवारिक कारणों से इस्तीफा दे दिया। सच यह है कि लालकृष्ण आडवाणी ने वेंकैया नायडू को इस्तीफा देने के लिए आदेश दिया और स्वयं आडवाणी जी 2004 में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हो गए। इसको बीजेपी के अंदर और बीजेपी के सहयोगी संगठनों के अंदर भी सकारात्मक ढंग से लोगों ने नहीं लिया।
आडवाणी के समर्थक कहते हैं कि उन्होंने ही वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद के लिए आगे किया, जबकि वो चाहते तो खुद इस पद के प्रबल दावेदार हो सकते थे। मशहूर वेबसाइट फर्स्ट पोस्ट के कार्यकारी संपादक अजय सिंह कहते हैं,
अगर पीछे जाएं तो वाजपेयी को सामने लाने वाले वही थे, यानी अगर आप 94-95 के आडवाणी को देखें तो ऑलमोस्ट ये स्थिति थी कि आडवाणी ही पीएम के रूप में बीजेपी के लिए सामने आते, पर शायद वस्तु स्थिति का, रियलिटी का जितना असेसमेंट आडवाणी को था उतना बाकी लोग को नहीं था। और आडवाणी ये जानते थे कि भारत जैसे देश में उस समय की स्थिति में एक कॉन्सेंसस वाला आदमी चलेगा, और उसको देखते हुए उन्होंने ये नाम आगे किया वाजपेयी जी का।
बीजेपी को नजदीक से देखने वालों का मानना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समर्थन पाने के लिए आपको हार्डलाइनर होना जरूरी होता है, लेकिन जब वही व्यक्ति प्रधानमंत्री पद की होड़ में होता है तो वो अपनी छवि को मुलायम करने की कोशिश करता है ताकि उसकी अखिल भारतीय स्वीकार्यता बढ़ सके। आडवाणी के साथ भी संभवतः यही हुआ।
ये डाइकोटॉमी बीजेपी के साथ हमेशा रही है, बीजेएस था इसके पहले के अवतार में, उसमें भी रही है। उसकी वजह यह है कि बीजेपी और या बीजेएस या आरएसएस, ये जिस फाउंडेशन पे खड़े हैं वो एक आइडियोलॉजिकल ये है जिसमें हिंदू राष्ट्र की बात है, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं उसमें इस तरह के एक एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपके एग्रेसिव होते हैं, रिजिड होते हैं, डॉगमा उनके आइडियोलॉजी का पार्ट है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जब आप संवैधानिक उस पे चले जाते हैं तो आपको इससे बाहर निकलना होता है। तो आपने हमेशा देखा होगा कि बीजेपी के वो नेता जो सीएम बनते हैं, पीएम बनते हैं, मिनिस्टर्स बनते हैं, उनके लिए ये रिकॉन्सिलिएशन जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, और ये आडवाणी के साथ भी था, ये अटल जी के साथ भी था। लेकिन अटल जी चूंकि बोलने की क्षमता और हिंदी हॉटलैंड की उनकी अंडरस्टैंडिंग या इंडिया की अंडरस्टैंडिंग अद्भुत थी, तो वो अपने वाक्यों से निकाल लेते थे, आडवाणी उस तरह से नहीं निकाल पाते थे, इसलिए आपने देखा होगा कि आडवाणी अपने इमेज में फंस के रह जाते थे।
शायद भारतीय राजनीति में स्वीकार्य होने की उनकी दबी इच्छा की वजह से ही उन्होंने पाकिस्तान जाकर मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ करने का अपनी समझ में मास्टर स्ट्रोक खेला था, लेकिन उल्टा उसने उनका राजनीतिक जीवन एक तरह से खत्म कर दिया।
उन्होंने क्यों किया इसको लालकृष्ण आडवाणी बेहतर बता सकते हैं अगर वो बताना चाहें। इस पर उन्होंने हमेशा लिपापोती की है। एक तो वाजपेयी की जैसी छवि थी वैसी ही छवि अर्जित करने की उनकी कोशिश थी। लालकृष्ण आडवाणी कराची से उठ करके दिल्ली आते हैं और दिल्ली आने के बाद जिस तरह का उनका राजनीतिक विकास हुआ है उसमें वे अटल बिहारी वाजपेयी के पूरक के रूप में तो अच्छे हैं, लेकिन स्वयं एक नेता के तौर पर अगर वो उभरते हैं तो वो आरएसएस के प्रवक्ता हो जाते हैं। ये उनका व्यक्तित्व है। अब ये जो दूसरी बात है आरएसएस का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश, इससे जैसे ही लालकृष्ण आडवाणी हटने की कोशिश करते हैं तो उनको दोहरा नुकसान होता है। पहला नुकसान ये होता है कि जिस जमीन पर वे खड़े हैं वो जमीन उनके पैर से खिसक जाती है, और उन पर गहरा अविश्वास पैदा हो जाता।
सवाल उठता है कि राजनीतिक रूप से कुशाग्र समझे जाने वाले लालकृष्ण आडवाणी से ये फैसला लेने में चूक क्यों हुई? आडवाणी के आलोचक और आरएसएस पर किताब लिखने वाले एजी नूरानी कहते हैं,
1984 के इलेक्शन में बीजेपी को सिर्फ 2 सीट मिली। उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हमारे लिए एक ही रास्ता है पुराने वोट्स लेने का, और वो यही है कि हिंदुत्व का ये रिवाइव करो। 89 में पालमपुर रेजोल्यूशन पास हुआ बीजेपी का, और आडवाणी ने खुल के बताया कि आई होप इट विल ट्रांसलेट इनटू वोट्स, बस वो बढ़ते गए। फिर उन्होंने महसूस किया 85 में कि उनको कौम प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाएगी, उन्होंने गादी छोड़ी वाजपेयी के लिए, मगर उनका दिल खुश नहीं था। फिर जब वाजपेयी जी का ये होगा तो वो समझे थे, वो जो जिना के ऊपर उन्होंने लिखा था वो पाकिस्तानियों को खुश करने नहीं, वो हिंदुस्तान में एक लिबरल इमेज के थे, उनका एक एडवाइजर था, उसने उनको बताया कि भाई ऐसा करो, और ये करे और फंस गए उसमें अपनी जाल में। उन्होंने मोदी को बचाया, नतीजा हुआ कि मोदी को बचाया और मोदी ने उनको बाहर कर दिया। अब आज उनका ये हासिल हुआ, न खुदा मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे।
नूरानी 2002 के गुजरात दंगों के बाद नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की घटना का जो जिक्र कर रहे हैं, राम बहादुर राय इसके बारे में एक दूसरी थ्योरी देते हैं।
वाजपेयी चाहते थे कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें, ये उनका तत्काल ये ख्याल था। तुरंत जो उनकी प्रतिक्रिया थी यही थी कि उनको नैतिक जिम्मेदारी लेकर के और इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने एक बयान में राजधर्म की शिक्षा भी दी, लेकिन वाजपेयी को ठंडा करने या अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिए जिस व्यक्ति को जिम्मेदार माना जाना चाहिए वो 2 लोग हैं, अरुण जेटली और प्रमोद महाजन। वाजपेयी दिल्ली से जब गोवा पहुंचे हैं तो उनके विमान में 2 लोग थे, आडवाणी तो थे नहीं, और उन्हीं 2 लोगों ने रास्ते में वाजपेयी को ये कहा कि ये पार्टी के हित में नहीं है। और पणजी जाते जाते जैसा वाजपेयी का स्वभाव था वो उन्होंने मान लिया। आडवाणी में ये हिम्मत नहीं थी कि वाजपेयी को ये कहें कि आप ये करें और ये ना करें।
नरेंद्र मोदी को बचाने में आडवाणी का सीधा हाथ भले ही न रहा हो, लेकिन इस बात से कम लोग गुरेज करेंगे कि कम से कम 2012 तक नरेंद्र मोदी आडवाणी के लेफ्टिनेंट हुआ करते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जब पार्टी ने उनकी जगह नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया तो आडवाणी उसे पचा नहीं पाए?
2009 में और 2014 वाले इलेक्शन में भी जिस तरह उन्होंने मोदी के आने को रेजिस्ट किया, उसमें कहीं ना कहीं एक झलक जरूर आती थी कि उनकी एक इच्छा है कि वो एक बार और इस अटेम्प्ट में जाएं कि वो पीएम बने। उन्होंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री के पोस्ट के लिए किसी उम्मीदवार के डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है। हमें लगता है कि शायद उनका ये मानना था कि अगर मोदी जैसे नाम को लेके हम चलते हैं तो पोलराइजेशन बहुत होगा, लेकिन अंदर से दबाव इतना था वर्कर्स का, पार्टी के लोगों का, कि आडवाणी उसमें साइडलाइन हो गए और ये माना गया कि आडवाणी आउट ऑफ स्टेप है ऑर्गेनाइजेशन से।
उम्र का तकाजा हो या नए नेतृत्व से तालमेल बैठा पाने की उनकी अक्षमता, आज अपने राजनीतिक जीवन की संध्या में आडवाणी पूरी तरह से अलग थलग नजर आते हैं। हालांकि कंचन गुप्ता जैसे उनके खैरख्वाह अब भी उनके लिए एक रचनात्मक भूमिका देखते हैं।
पार्टी की जो लीडरशिप है, उनकी जो जनरेशन है, उनकी जो उम्र है, उनकी जो सोच है, उनके जो विचार है, ये सोचना ये कहना गलत होगा कि वो जैसे आडवाणी जी सोचते हैं हूबहू उस तरीके के, ये ऐसा संभव भी नहीं है ना ही है। तो फिर ऐसे स्थिति में ये कहना कि हर बार जब पार्टी की बैठक होगी आडवाणी जी वहां होंगे, इससे ना वो कंफर्टेबल होंगे ना बाकी लोग कंफर्टेबल होंगे। तो सही बात तो यही होता है कि आडवाणी जी का जो कद है, उनका जो स्टैचर है, वो डेली लाइफ पॉलिटिक्स की नहीं है, वो एक एडवाइजरी, एक गाइडिंग रोल होता है, एक एडवाइजरी रोल होता है, मॉरल कंपास का रोल होता है, उस रोल के लिए है जो बाकी उन भाजपा में और कोई उस रोल को प्ले नहीं कर सकता है। अटल जी अगर उनकी तबीयत सही होती, अगर वो घूम सकते, बात कर सकते, चल सकते, तो अटल जी का भी यही रोल होता।
लेकिन आपको लगता है कि वो रोल भी उन्हें दिया जा रहा है जिस रोल की आप बात कर रहे हैं, एडवाइजरी रोल? वो
एक टूटू मैम की विषय, मैं उसमें नहीं जा, मैं उसमें कमेंट नहीं करूँ। लेकिन हाँ, अगर आप टेक्निकली देखें, ये रोल उनका है और उनका ये पूरा हक बनता है वो इंटरवेंशनिस्ट रोल प्ले करें, वो बीच में को कहते हैं इंटरवीन करना, इंटरसेप्ट करना कि नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है या इसको इस तरीके से किया जाए, ये कहना उनका पूरा हक बनता है। और अगर वो कहेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई उसको इनकार करेगा या उसको कोई इग्नोर करेगा।
कंचन गुप्ता कुछ भी कहें, भारतीय जनता पार्टी में लालकृष्ण आडवाणी पूरी तरह से हाशिए पर जा चुके हैं। ये उनके लिए तकलीफ का सबब भी है। इसको एक विडंबना ही कहा जाएगा कि सुधींद्र कुलकर्णी के चेहरे पर जब शिवसेना के कार्यकर्ता स्याही फेंकते हैं तो आडवाणी कहते हैं कि जनतंत्र में भिन्न दृष्टिकोण के लिए सहनशीलता की गुंजाइश होनी चाहिए। ये अलग बात है कि बहुत से लोगों का मानना है कि इन्हीं आडवाणी ने भारत में असहिष्णुता के बीज बोए थे। अब ये लगभग निश्चित है कि वो न तो कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे और न ही राष्ट्रपति। शाद लखनवी का एक शेर याद आता है, न तड़पने की इजाजत है न फरियाद की है, घुट के मर जाएं ये मर्जी मेरे सयाद की है। रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
रेहान फजल की ये विवेचना आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। और अब सुनते हैं खेल समाचार आदेश कुमार गुप्त से जो स्टूडियो में आ चुके हैं। बताइए आदेश जी, क्या है आज खेल के समाचारों में?
जी देखिए, आज तो चर्चा में दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच मोहाली भी खेला जा रहा पहला टेस्ट मैच ये, जहां आज मैच के दूसरे दिन ही खेल अत्यंत रोमांचक स्थिति में पहुंच चुका है, क्योंकि आज जब दूसरे दिन का खेल समाप्त हुआ तब भारत ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर 125 रन बना लिए थे। मुरली विजय ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए खासकर एक ऐसे विकेट पर जहां पर गेंदबाजों को खुद नहीं मालूम कि गेंद कितना टर्न होगी, कितना स्पिन होगी, ऐसे खराब विकेट पर उन्होंने 105 गेंदों का सामना करते हुए 47 रन बनाए। हालांकि दूसरे छोर पर उनके जोड़ीदार शिखर धवन का बल्ला आज भी नहीं चला और दूसरी पारी में भी वो अपना खाता तक नहीं खोल सके। फिलेंडर की गेंद पर वो एबी डिविलियर्स के हाथों कैच हुए, लेकिन चेतेश्वर पुजारा ने अपना दमखम दूसरी पारी में भी दिखाया और वो 63 रन बनाकर नाबाद है। विराट कोहली ने भी संभल कर बल्लेबाजी की, वो 11 रन बनाकर खेल रहे हैं। आज इससे पहले भारत की स्पिन तिकड़ी रामचंद्र अश्विन, रविंद्र जडेजा और अमित मिश्रा ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की, जिसकी बदौलत दक्षिण अफ्रीकी टीम केवल 184 रन पर ढेर हो गई। हालांकि हाशिम आमला ने काफ़ी लंबे समय तक विकेट पर डटे रहने की हिम्मत दिखाई, उन्होंने 147 गेंदों का सामना करते हुए 43 रन बनाए और ए बी डिविलियर्स ने कुछ जीवनदान उन्हें मिले। एक बार रविंद्र जडेजा की गेंद पर वो आउट थे लेकिन वो 9 बॉल निकली, तो कुछ इस तरह के जीवनदान के सहारे उन्होंने 63 रनों की पारी खेली। और इससे पहले डीन एलगर ने भी 37 रनों की पारी खेली, लेकिन बाकी कोई बल्लेबाज जैसे फिलेंडर, हार्मर, डेलिस्टेन, रबाडा और इमरान ताहिर ये कुछ खास नहीं कर सके। आर अश्विन ने 51 रन देकर 5 विकेट लिए, रविंद्र जडेजा ने 55 रन देकर 3 विकेट लिए और अमित मिश्रा ने 35 रन देकर 2 विकेट लिए। और अब इस तरह से जो भारत की स्थिति है वो काफ़ी मजबूत नज़र आती है। भारत के पास अब पहली पारी की 17 रनों की बढ़त बढ़ाकर कुल मिलाकर 142 रनों की बढ़त है और उसके
क्या लगता है
8 विकेट बाकी हैं।
टीम इंडिया जो है ये 2020 तो हार ही चुकी है और वनडे सीरीज भी हार चुकी है, अब क्या इसमें कुछ उम्मीद बनती है कि नहीं बनती है?
जी देखिए, भारत के पास 8 विकेट हैं और इस विकेट के बारे में कुछ भी भविष्यवाणी करना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन इस विकेट पर अगर 250 रन भी दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए होंगे तो दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए ना को चने चबाने पड़ेंगे।
बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्त खेल समाचारों के लिए। और अब आखिर में सुन लेते हैं प्रमुख समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। इंडोनेशिया के बाली से गिरफ्तार किए गए छोटा राजन को आज भारत ले आया गया। छोटा राजन के खिलाफ दर्ज किए गए सभी मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। पर्यावरण के मामलों पर काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था ग्रीन पीस के मुताबिक भारत में संस्था का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मिस्र जाने वाली रूसी उड़ानों को रोकने पर सहमति जताई है। उन्होंने सरकार को मिस्र में मौजूद रूसी पर्यटकों को वापस लाने के लिए योजना बनाने का आदेश दिया है। तुर्की पुलिस ने अंताल्या शहर में 20 लोगों को चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट से कथित तौर पर जुड़े होने के शक में गिरफ्तार किया है। अंताल्या में 15 और 16 नवंबर को G20 देशों का शिखर सम्मेलन होने वाला है। म्यांमार में रविवार को आम चुनाव होने वाले हैं, जिससे पहले सत्तारूढ़ पार्टी ने आज यंगॉन में आखिरी बड़ी चुनावी रैली की। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुना रही थी हरिता कांडपाल। आज दिन भर में इतना ही, आपसे अगली मुलाकात होगी ठीक डेढ़ घंटे बाद घटना चक्र में। आज स्टूडियो संभाल रहे हैं शाकिर आलम, सभी साथियों संग निखिल रंजन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।